नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। पूंजी बाजार के नियामक सेबी ने शुक्रवार को 4 कंपनियों को स्वीकृति के बगैर निवेश परामर्श सेवाएं देने के लिए प्रतिभूति बाजारों से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। सेबी ने कोर्स वर्क फोकस और इसके मालिक शशांक हिरवानी, कैपिटल रिसर्च के मालिक गोपाल गुप्ता और केपर्स के मालिक राहुल पटेल को 6 महीने के लिए प्रतिभूति बाजार में भागीदारी करने से रोक दिया। 2 अलग अलग आदेशों में सेबी ने अपनी पड़ताल में पाया कि ये कंपनियां निवेश सलाहकार के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अनाधिकृत निवेश सलाहकार सेवाओं में लगी हुई थी। बाजार नियामक के अनुसार कोर्स वर्क फोकस और हिरवानी ने मार्च 2018 से जुलाई 2020 के दौरान सामूहिक रूप से निवेशकों से 96 लाख रुपए से अधिक जुटाए थे। वहीं गुप्ता और पटेल ने मिलकर जून 2014 और नवंबर 2019 के बीच निवेशकों से 60.84 लाख रुपए एकत्र किए। पीएम गति शक्ति पहल के तहत नेटवर्क नियोजन समूह ने रेलवे से संबंधित 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। शुक्रवार को आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। सरकार ने अक्टूबर 2021 में लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए एकीकृत और नियोजित बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए लक्ष्य के साथ पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी। 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक और संपर्क सुविधा से जुड़ी ढांचागत परियोजनाओं को एनपीए के जरिए मंजूरी दी जाती है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा। पीएम गति शक्ति के तहत एनपीजी ने अपने 46वें बैठक सत्र में 4 ढांचागत परियोजनाओं पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। इन परियोजनाओं को एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण के साथ पीएम गति शक्ति सिद्धांतों के तहत विकसित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएं बहु मॉडल संपर्क सुविधा, माल और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही भी उपलब्ध कराएगी। वाहन कल पुर्जा और उपकरण क्षेत्र की कंपनी कल्याणी फोर्ज के मुख्य वित्तीय अधिकारी लक्ष्मी नारायण पात्रा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका इस्तीफा 6 अप्रैल 2023 से लागू हो गया। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में कहा, लक्ष्मी नारायण पात्रा ने इस्तीफा के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। कल्याणी फोर्ज एक इंजीनियरिंग कंपनी है। ये परिवहन, विनिर्माण, विद्युत उत्पादन, मरीन, रेलवे और औद्योगिक सामग्री जैसे उद्योगों में ग्राहकों के लिए मशीनी और असेंबल किए गए उत्पाद बनाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा महंगाई के मोर्चे पर मामूली राहत के संकेत दिए, साथ ही ब्याज दरों को जस का तस रखा है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गुरुवार को अप्रत्याशित रूप से नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5% पर बरकरार रखा। आरबीआई के इस कदम से वाहन, मकान और अन्य ऋणों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के रुख पर लगाम लगेगी। साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को मामूली बढ़ाकर 6.5% करा। आरबीआई ने खुदरा मुद्रा स्फीति का अनुमान मामूली घटाकर 5.2% कर दिया। हालांकि रिजर्व बैंक ने माना कि प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ने से मुद्रा स्फीति के मामले में भविष्य में जोखिम पैदा हो सकता है। फरवरी में हुई पिछली मौद्रिक समीक्षा में मुद्रास्फीति के 5.3% रहने का अनुमान लगाया गया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के कच्चे तेल के उत्पादन को घटाने के फैसले से मुद्रास्फीति का परिदृश्य गतिशील बना हुआ है। दास ने कहा कि सामान्य मॉनसून के बीच यदि कच्चे तेल के दाम औसतन $85 प्रति बैरल पर रहते हैं तो चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 5.2% रहेगी। नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अवाडा एनर्जी ने शुक्रवार को बताया कि उसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन से 421 मेगावाट की सौर परियोजना मिली है। परियोजना प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए दी गई। नीलामी में अवाडा को ये परियोजना 2.70 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिली है। अवाडा ने एक बयान में कहा, उसे DVC की तरफ से REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा आयोजित नीलामी में ISTS से जुड़ी 421 मेगावाट सौर PV परियोजना मिल गई। बोली शर्तों के अनुसार ये समझौता 2 इकाइयों के बीच 25 वर्षों के लिए हुआ है। ये परियोजना 18 महीने में शुरू हो जाएगी। इस संयंत्र से प्रतिवर्ष 75 करोड़ यूनिट हरित ऊर्जा पैदा होगी, जिससे 6,98,250 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन कम होगा। इस सौर परियोजना में 5 लाख घरों को बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। ONGC की त्रिपुरा इकाई से गैस उत्पादन वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक का सर्वाधिक 1.675 अरब घन मीटर रहा, एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इससे पहले त्रिपुरा में ONGC का सर्वाधिक गैस उत्पादन वित्त वर्ष 2020-21 में 1.634 अरब घन मीटर था। अधिकारी ने बताया, तेल और गैस का विस्तार एक जोखिम भरा काम है जिसमें उत्पादन हमेशा प्रयास पर आधारित नहीं होता और मार्ग में प्रत्येक कदम पर प्रौद्योगिकी का दखल होता है। हमें खुशी है कि ONGC त्रिपुरा एसेट ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इतना उत्पादन किया। रिकॉर्ड उत्पादन करने और आगामी दिनों में उच्च स्तरीय परिणाम बनाए रखने के लिए पिछले कुछ साल में कई मुहिम चलाई गई हैं, उन्होंने कहा। इसके अलावा लॉजिस्टिक एवं वैश्विक स्तर पर चुनौतियों का सामना करने के लिए ONGC ने और दूरस्थ स्थानों का पता लगाने को लेकर हाल ही में हवाई हाइड्रोकार्बन सर्वे शुरू किया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।